अवधारणा के पीछे विवाद। संस्कृतकरण ने एक अवधारणा के रूप में न केवल भारतीय संस्कृति एवं इसकी संस्थाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया के बहुत निर्णायक पहलू को चिन्हित किया, बल्कि इस शब्द के प्रयोग से भारतीय समाजशास्त्र में शीघ्र ही विवाद की शुरुआत हो गई, जिसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। यह तर्क दिया जाता है कि एक प्रक्रिया के रूप में संस्कृतकरण की विवेचना सामाजिक संरचना में विभिन्न समूहों द्वारा अनुभूत सामाजिक आर्थिकगत वचनों के स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए। एक मत यह भी है कि संस्कृतकरण बड़ी एवं छोटी परंपराओं के विरासत क्रम पर आधारित है, अथवा प्रभावी सांस्कृतिक परंपराएं रेखीय रूप में सक्रिय होती हैं। मैकिम मैरियोट का विचार है कि गैर संस्कृत परंपराओं की कीमत पर कोई स्पष्ट संस्कृतकरण की प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने उधार की बजाय सांस्कृतिक रूप में बिना प्रकट विस्थापन एवं संग्रहित एवं परिवर्तित तत्वों के तर्क आधार के बिना वृद्धि एवं उत्परिवर्तनत का प्रमाण पाया। सांस्कृतिक प्रथाएं प्रायः गैर सांस्कृतिक प्रथाओं को विस्थापित किए बिना उनमें मिल जाती हैं। पेज नंबर 152। समाज शास्त्रियों ने संस्कृतकरण को न केवल भिन्न भिन्न प्रकार से समझा है, बल्कि उन्होंने परस्पर विरोधी कारणों से इसकी आलोचना या सराहना भी की है। उदाहरणार्थ, एडवर्ड बी हार्पर इसे संस्कृतकरण को ऐतिहासिक अवधारणा से भिन्न व्यवहारिक या क्रियात्मक अवधारणा मानते हैं। उधर जे एफ स्टूल लिखते हैं कि संस्कृतकरण एक प्रक्रिया का उल्लेख करती है और परिवर्तन की अवधारणा है। जैसा श्रीनिवास स्वयं स्वीकार करते हैं कि संस्कृतकरण की अवधारणा सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक अथवा स्थितिपरक रूपों को चिन्हित करने में सहायता करती है और संरचनात्मक रूपों को नहीं, तथापि संस्कृतकरण सामाजिक प्रणाली में संरचनात्मक अवरोधों अथवा दबावों के अस्तित्व की पूर्व कल्पना करता है। इसलिए यह श्रीनिवास के अन्य महत्वपूर्ण मत जो प्रभावशाली जाति का है से संबंधित हैं। जी एन सेठ ने तर्क दिया है कि श्रीनिवास की अवधारणा भारतीय समाज में घटित हो रहे सामाजिक परिवर्तन अथवा जातीय रूपांतरण की व्याख्या करने में सक्षम है। उनका विचार था कि ब्राह्मणों और अन्य ऊंची जातियों का उच्च रीति रिवाज आधारित दर्जा ही छोटी जातियों के सदस्यों के लिए मुख्य प्रेरणा रहा। सेठ का कथन है कि कहीं भी किसी छोटी जाति को केवल इस कारण ऊंचा दर्जा नहीं मिला कि उसके सदस्यों ने शराब पीना छोड़ दिया, शाकाहारी बन गए अथवा ऊंची जातियों के रीति रिवाज अपना लिए। लिंच ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी से आगरा के जाटवों के अध्ययन में श्रीनिवास की संस्कृतकरण की अवधारणा का समर्थन नहीं किया है। लिंच के अनुसार संस्कृतकरण की अवधारणा संस्कृति से बंधी अवधारणा है। यह गतिशीलता आंदोलनों का तुलनात्मक संरचनात्मक विश्लेषण नहीं कर सकती है। संस्कृतकरण को शुद्ध करने के लिए लिंच का मुख्य तर्क यह है कि स्वतंत्रता के बाद के भारत में लोकतांत्रिक संविधान, संसदीय लोकतंत्र तथा राजनीतिक सहभागिता की संभावनाएं मिलकर संस्कृतिकरण का क्रियात्मक विकल्प प्रस्तुत करती हैं। यह तर्क दिया जाता है कि श्रीनिवास की अवधारणा संरचनात्मक परिवर्तनों की बजाय केवल स्थितिपरक परिवर्तन से ही संबंधित है। कुछ एक परिवारों के स्थितिकरण परिवर्तन वंशानुसार पर आधारित जाति की अवधारणा को पुनः लागू करते हैं, लेकिन ये संरचनात्मक परिवर्तनों में सामाजिक स्तर के आधार के रूप में जाति का स्थान वर्ग ले लेता है। इस प्रकार संस्कृतकरण की अवधारणा संरचनात्मक परिवर्तन की पोषक नहीं है। सामाजिक सीढ़ी पर किसी परिवार विशेष का कोशिकीय आरोह और अवरोह वंशानुक्रम जाति प्रणाली में परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि यह किसी परिवार निषेध की अपने जातीय समूह में अपेक्ष स्थिति का थोड़ा सा समायोजन या पुनः समायोजन मात्र है। इस प्रकार संस्कृतकरण की प्रक्रिया जातीय गतिशीलता को रेखांकित नहीं करती है, बल्कि एक जातीय समूह के भीतर मामूली समायोजन को दर्शाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई उपजाति प्रकट हो सकती है। पेज नंबर 153। जब छोटी जातियां मांसाहारी होने की अपनी आदतें छोड़ देती हैं और शाकाहारी बन जाती हैं तो उन्हें श्रीनिवास द्वारा सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते माना गया। लेकिन जब ऊंची जाति के लोग औपचारिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने अंग्रेज बॉस का अनुकरण करते हुए मांसाहारी बन गए तो वह इसका कारण बताने में असफल रहे। शाकाहारी एवं मांसाहारी होने का संबंध भौगोलिक परिस्थितियों, भौतिक वातावरण तथा कुछ विशेष भोज्य पदार्थों की उपलब्धता, अनुपलब्धता और कुछ धार्मिक विश्वासों से भी जुड़ा होता है। शैव भगवान शिव के उपासक कश्मीर के ब्राह्मण मांसाहारी हैं। इसी प्रकार बंगाल के ब्राह्मण मछली खाते हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि वे अपना जातीय दर्जा गंवा देंगे? जाति व्यवस्था क्रम में ब्राह्मण जाति के लोगों का उच्च स्थान इसलिए नहीं रहा कि वे आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली थे, बल्कि धार्मिक साहित्य के उनके ज्ञान के कारण रहा है। इसलिए जाति व्यवस्था अनुक्रम से आर्थिक आधार का कोई संबंध नहीं है। आधुनिक समाज वर्ग स्तर प्रणाली पर आधारित है और इसलिए आर्थिक आधार को अधिक महत्व दिया जाता है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ग स्तर आधारित प्रणाली में यह व्यक्ति है जो अपने गुणों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था अनुक्रम में कोई स्थान प्राप्त करता है। जाति प्रणाली में रोपित गुण अथवा समूह का समूचे तौर पर दर्जा व्यक्ति की अपेक्षा महत्वपूर्ण होता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक आधार में सुधार किसी छोटी जाति के परिवार की जीवन शैली को बदल सकता है अथवा ऊंची जाति के समूह के रहन सहन के ढंग का अनुसरण करने पर उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान कर सकता है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि ऐसे परिवार उन परिवारों में ऊंचा स्थान ला सकते हैं जिनका जाति प्रणाली में ऊंचा स्थान है। हालांकि वे अपनी जाति के अन्य सदस्यों की तुलना में अपने स्तर को सुधार लेते हैं, जो क्षैतिज गतिशीलता की बजाय और कुछ नहीं है और उसे संरचनात्मक गतिशीलता का उदाहरण नहीं माना जा सकता। संस्कृतकरण की अवधारणा की उपर्युक्त त्रुटियों के बावजूद यह भारतीय जाति प्रणाली में सामाजिक स्तरीकरण अथवा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण आए परिवर्तनों के प्रकार की व्याख्या करने में बहुत महत्वपूर्ण है।